अध्याय 11वां। काबुल की ओर जाती हुई बस में मैं अपने सहयात्रियों के साथ सटकर बैठा था। बस में आगे से पीछे तक रखे लकड़ी के दो बेंचों पर बैठने की व्यवस्था थी। बीच में दर्जनों चूजे जोर से कूट कूट करते हुए अपने हर फड़फड़ाकर हवा में पंख तितर बितर कर रहे थे। मुर्गे छाती फुलाकर बांग दे रहे थे। बकरियां खाने के लिए इधर उधर मुंह मार रही थी और कुछ भेड़ें अपनी मालिक के इर्द गिर्द बैठी जोर जोर से मिमी आ रही थी। जानवर अपने साथ मक्खियों के झुंड और अन्य विचित्र कीड़े भी लेकर आए थे। एक अपनापन सा दिखाती बकरी मेरी आंखों में से ऐसे देखने लगी मानो कुछ याचना कर रही हो। फिर अति उत्साह के साथ वो मेरी पैंट की मोहरी को चबाने लगी, जो निश्चित ही स्वादिष्ट होगी क्योंकि शीघ्र ही एक दूसरी बकरी उसके साथ मिलकर दूसरी मोहरी को चबाने लगी और एक चूजा उड़कर मेरी गोद में आ बैठा तथा मेरी जांघों पर चोंच मारने लगा। इस चलते फिरते बाड़े के साथ यात्रा करना उन यात्रियों के लिए रोजमर्रा का हिस्सा था और किस्सा भी। वे सभी मेरी ओर घूर कर देखते और मुस्कुराने लगे। शायद मेरे जैसे जीन्स कमीज पहने और लंबे लहराते बालों वाले विचित्र प्राणी को देखना उनके लिए भी एक अनोखा अनुभव था। बस रुकी और सारे मानव यात्री रेगिस्तान में उतर गए। उन्होंने अपनी चटाइयां बिछाई और पवित्र मक्का की ओर मुंह करके नमाज अदा करने लगे। बस में केवल पशु और मैं ही बच गए। मैंने एक बार पढ़ा था कि अध्यात्म के बिना मानव दो पैर वाला जानवर ही है। यद्यपि मैं विभिन्न धर्मों और पंथों में खोज करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, फिर भी मैंने अभी तक किसी एक मार्ग को नहीं चुना था। जब श्रद्धालु मुसलमान बाहर नमाज अदा कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं बस में बचे अपने सहयात्रियों में से ही एक हूं। किसी समय मुगल साम्राज्य की भव्य राजधानी रहा काबुल एक सुंदर शहर है। एक ऊंचे पर्वतीय पठार पर हिमाच्छादित चोटियों से घिरा ये अफगानिस्तान की राजधानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। यहां मैं जेफ और रामसे से पुनः मिला। वे काबुल में लगभग एक सप्ताह से थे और प्रसिद्ध जीटी रोड से भारत में प्रवेश करने के लिए आतुर थे। हमने निश्चय किया कि हम एक साथ खैबर पास से होते हुए पाकिस्तान जाएंगे। एक दिन प्रातः उठकर हम बस अड्डे की ओर चल दिए। जेफ ने हमारे लिए टिकट खरीदे, लेकिन चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को अपने दस्तावेज बस के बाहर खड़े अप्रवासी अधिकारियों को दिखाने थे। जेफ और रामसे पंक्ति में मेरे आगे खड़े थे तथा औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात वे बस में चढ़ गए। लेकिन जब मेरी बारी आई तो अप्रवासी अधिकारियों को कुछ गलतफहमी हो गई। एक अधिकारी ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे खींचते हुए अपने कार्यालय में ले गया। इतने में वो बस चल पड़ी। जेफ और रामसे मेरी टिकट लेकर बस में चढ़ चुके थे। बिना यह देखे कि मैं पीछे ही छूट गया था, वे आगे बढ़ गए। बाद में पता चला कि एक अन्य अधिकारी ने गलती से मेरे प्रस्थान की गलत तिथि लिख दी थी। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। काबुल में अकेला असहाय मैं सोचने लगा कि आगे कैसे जाऊं। खैबर पास में अकेले हिचहाइक करके जाना अकल्पनीय था। यह पृथ्वी के सर्वाधिक अराजकता भरे क्षेत्रों में से एक रूप में कुख्यात था। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य इस सीमा क्षेत्र के विषय में बहुत ही भयानक किस्से सुने थे। यहां पर निर्जन पहाड़ियां और हिंसक कबीले थे जो किसी कानून का पालन नहीं करते थे। पश्चिमी अमेरिका में के आदिम निवासियों के समान यहाँ के लोग भी अपने मतभेदों को भरी बंदूकों और गोलीबारी से सुलझाते थे। खून खराबे और डकैती को अपनी जीवन शैली मानते थे। मैंने सुना था कि यहाँ पर्यटकों की बसों को बंदूक की नोक पर रोककर यात्रियों को लूट लिया जाता है और कभी कभार उन्हें मार भी दिया जाता है। बस की कंपनियां हिंसा से बचने के लिए कबीलों के नेताओं को पैसा देती थी। मैं नहीं जानता था इन किस्सों में कितनी सच्चाई थी, लेकिन निश्चय ही यह स्थान झूठ सच ढूंढने का स्थान नहीं था। अब मैं क्या करूं? बस की टिकट खरीदने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं थे। काबुल की सड़कों पर अपनी नियति के बारे में सोचता हुआ मैं अकेला घूमने लगा। इस तरह से पूरा दिन बीत गया। रात के साथ ठुठराती ठंड आई। न तो मेरे पास गर्म कपड़े थे और न सिर छिपाने के लिए स्थान। पूर्णिमा का चंद्रमा बर्फ के गोले के समान था। कांपते हुए मैं एक निर्जन सड़क के किनारे बैठ गया और ध्यान में बैठकर आंखें बंद किए हारमोनिका को अपने होठों से लगाकर अंतकरण से एक धुन बजाने लगा। कुछ समय पश्चात जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक सुडौल युवती मेरे सामने खड़ी थी। उसके गहरे सुनहरे बाल ठंडी हवा में लहरा रहे थे। उसने मेरी ओर दया दृष्टि से देखा। क्या आधी रात को बिना गर्म कपड़ों के तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसने पूछा। चमकीली नीली आंखों से मुझे देखती हुई वो ठंड से कांप रही थी। मैंने उसे अपनी आप बीती कह सुनाई। मैं हॉलैंड से आई हूं, उसने मधुर स्वर से मैं कहा, लेकिन अनेक वर्षों से काबुल में रह रही हूं। तुम मेरे घर आकर आज की रात बिता सकते हो। कृतज्ञतापूर्वक मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। बाहर की ठिठुराती गलियों से वो मुझे एक दरवाजे से भीतर एक गर्म एवं सुंदर कमरे में ले गई। सुनहरी और हरे रंग के पर्दों से सजे उस कमरे में एक सफ़ेद सोफ़ा, बहुमूल्य मेज तथा कुर्सियाँ थीं। उसने मुझे उस कोमल सोफे पर बैठने के लिए कहा। हाईलैंड पार्क में अपना घर छोड़ने के पश्चात मैंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। मुझे लगा कि घर छोड़े युग बीत गए थे। उस डच स्त्री ने मुझे खाने की मेज पर बुलाया और मुझे मक्खन के साथ गर्म ब्रेड, भुनी हुई सब्जियां और चॉकलेट केक परोसा। मैं सोचने लगा कि शायद ये एक सौभाग्य ही था कि मेरी बस छूट गई। कुछ आम चर्चा के पश्चात उसने मुझे विश्राम करने के लिए कहा। इतनी देर ठंड में बैठने के बाद तुम बहुत थक गए होंगे। वो मुझे कमरे में ले गई जहां दो पलंग थे। ये तुम्हारा पलंग है, मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। अचानक दूसरे कमरे से एक भीमकाय व्यक्ति प्रकट हुआ। मेरी मेजबान ने उसका परिचय कराया। ये अफगानी योद्धा मेरा अंगरक्षक और मेरा वफादार है। मैंने सिर उठाकर अपने सामने खड़े उस खासे ऊंचे, लंबे और तगड़े व्यक्ति को देखा। वो 6'4" का था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था और उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह फूली थी। उसके लंबे तेल लगे बाल कोयले के समान काले थे और चेहरे पर बिखरी हुई दाढ़ी थी। मैं अपने पलंग पर बैठ गया और वो अफगानी योद्धा अपने पलंग पर। एक आंख भींचकर उसने अपनी काली आंखों से मुझे भेदते हुए देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठियां अपने सिर से ऊपर उठाई और गुर्राते हुए एक लंबी उबासी ली। उसके शरीर से पसीने की दुर्गंध के भभूके उठ रहे थे। मेरी मेजबान ने कहना जारी रखा, ये मेरा रक्षक है। मैंने इसे अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से एक व्यक्ति की खोपड़ी फोड़ते हुए देखा है। अभी तुम सो जाओ। वो वहां से निकलकर बगल के कमरे में चली गई। मोतियों की लड़ियों से बने एक पर्दे के पीछे लुप्त होने से पहले उसने बिजली बंद कर दी। मैं अपने कमरे में जाती हूं। वो अफगानी योद्धा कमरे में मेरा साथी था और हैरानी की बात तो ये थी कि उसे अपने निकट पाकर मैं सुरक्षित अनुभव कर रहा था। घर इतना गर्म और आरामदायक था कि जैसे ही मैंने अपनी थकी हुई देह को पलंग पर छोड़ा, मुझे परम सौभाग्य की अनुभूति हुई। यदि ये भली स्त्री मुझ पर दया नहीं करती तो कैसे मैं उस ठंडी रात में बच पाता। कोमल कंबल को ओढ़कर इस अनुभव का आनंद लेते हुए मैं नींद में खो गया। कुछ मिनटों पश्चात मेरी नींद खुली। मेरी मेजबान मोतियों के पर्दे को चीरती हुई मेरे कमरे में प्रविष्ट हुई। उसने केवल एक पारदर्शी रेशम नाइट गाउन पहन रखा था। अगरबत्ती जल रही थी और हल्का संगीत बज रहा था। वो मेरे बिस्तर के पास आई और मेरे कानों में मधुर शब्द बोलने लगी। तुम इतने युवा और सुंदर हो। उसकी आंखें काम वासना से दहक रही थी। अपने गाउन को उतारकर उसने अपनी निर्वस्त्र देह को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिया और अपनी बाहों से मुझे लपेटकर अपनी सुगंधित देह को मेरे ऊपर रख दिया। मैं हक्का बक्का हो अपनी खोज के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करने लगा। क्षमा करें, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कृपया मुझे सोने दें। मैंने याचना की, लेकिन उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और वो मुझे विभिन्न प्रकार से उत्तेजित करने का प्रयत्न करने लगी। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। मैं केवल यही कह पा रहा था, मैं असहाय अवस्था में वहां एक मृत ठंडी मछली के समान पड़ा था। कामोन्माद में उसने धीरे से मेरे कान में कहा, यदि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मेरा अंगरक्षक तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा, तुम बच नहीं सकते। क्रोध में आकर उसने चिल्लाकर अपने अंगरक्षक को पुकारा। वो लड़ाकू अपने पलंग से उछलकर खड़ा हुआ और भागते हुए हमारे पास आ गया। मान जाओ वरना मारे जाओगे, वो गुर्राया। मेरा दिमाग चकरा रहा था। वो स्त्री मुझे जीतने का प्रयत्न जारी रखे थी और मैं उसके नीचे कांप रहा था। अब वो अफगानी पहलवान मेरे सिर पर आकर खड़ा हुआ। उसने मेरे बाल खींचे और चिल्लाया, मान जाओ नहीं तो मारे जाओगे। उसके शब्द बम की तरह मेरे सिर में फट रहे थे। मेरे मन में अनेक प्रश्न दौड़ने लगे, क्या यह दुस्स्वप्न है? उसे समर्पण करूं या मरूं? क्या मेरे साथ ये सब हो रहा है? तभी एक झटके में मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस स्त्री को धकेल दिया, अपना बैग और जूते दबोचे और दरवाजे की ओर भागा। मेरा स्लीपिंग बैग वहीं छूट गया। वो चिल्लाई, अंगरक्षक गुर्राया और मुझे पकड़ने के लिए उसने छलांग लगाई, लेकिन मैं पैंतरा बदलकर बच निकला। पूरी शक्ति के साथ मैं उस दरवाजे से बाहर निकला और गली में भागने लगा। पहलवान बिल्कुल मेरे पीछे था। क्रोध से खौलते हुए वो चिल्ला रहा था। बिना मुड़े मैं भागता रहा। मुझे डर था कहीं उसकी भारी भक्कम मुट्ठी मेरी नाजुक खोपड़ी को न फोड़ दें। मैं भागता रहा और भागता रहा। किसी प्रकार मैं बच गया। मैं एक बार फिर अकेला था। आधी रात को बिना किसी ठौर ठिकाने के काबुल की सुनसान गलियों में घूमने पर मुझे लगा कि ठिठुराती रात जिसमें मैं पहले डर रहा था, अब वही मुझे आश्रय प्रदान कर रही है। जो बर्फीला चांद मुझे हड्डियों तक कंपा रहा था, अब ऐसी गर्माहट दे रहा था जो मेरे थके हुए मन को शांति प्रदान कर रहा था। दिशाहीन चलते हुए अब मैं स्वतंत्र था। सितारों को देखते हुए मैं काम की शक्ति पर मनन करने लगा। काम भगवान का उपहार हो सकता है, लेकिन जब ये हवस का रूप ले लेता है तो बुद्धि को हर लेता है, और इस काम की पूर्ति हेतु लोग जघन्य कार्य करने के लिए इसके वशीभूत हो जाते हैं। जब काम भावना पूर्ति नहीं होती तो लोगों का विवेक नष्ट हो जाता है। मैं सोचने लगा, सभी पंथों के इतिहास में ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने पवित्र भेंट के रूप में कामेच्छा का उपयोग करके आदर्श परिवारों का पालन पोषण किया है, लेकिन फिर क्यों उसी इतिहास में अनेक संतों ने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन किया? मैं सोच सोच कर अपने ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगा। शायद वे सभी समझ गए थे कि स्त्री पुरुष का आकर्षण भगवान के प्रति उनके पूर्ण समर्पण में बाधक है। शायद वे इस प्रबल शक्ति को प्रार्थनाओं और भक्ति की ओर निर्देशित करना चाहते थे। शायद मैं भी इसी दिशा में खोज कर रहा था। निश्चित ही इसलिए मैं इटली में इरीन से अलग हुआ था। मैंने सोचा, प्रेम हृदय की भेंट है, शुद्ध प्रेम निस्वार्थी होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के। पूर्णिमा का चंद्र काबुल के आकाश में ऊपर उठकर पर्वतों पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था कि मेरी हृदय से पुनः एक प्रतिज्ञा उभर आई, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। चुपती सर्द हवा के आगोश में मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वे इस वचन को निभाने में मेरी सहायता करें। प्रातः सूर्य काबुल के विहंगम पर्वत शिखरों के ऊपर उठा और मैं ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा, तेजी से बस अड्डे की ओर चल पड़ा। मुझे यह जानकर राहत मिली कि जेफ ने मेरी टिकट लौट रहे बस चालक के हाथों में भिजवा दी थी। साथ में उसने कुछ पैसे भी भेजे थे। बस में चढ़ने से पहले मैंने पीछे मुड़कर अंतिम बार काबुल शहर को देखा। अफगानिस्तान के इस पहाड़ी पठार पर मैंने ज्ञान की खोज करते हुए अपनी आंतरिक यात्रा में एक बड़ा कदम उठाया था। एक कठिन व्रत को अंगीकार करने की प्रार्थना करते हुए जिसे निभाने के लिए मैं कृतसंकल्प था। मैं अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहा था। खिड़की से मुझे सूखी भूमि पर खड़े पहाड़ दिखाई देने लगे। ढलानों पर गरीब किसान मेहनत करके छिटपुट फसल उगाने का प्रयत्न कर रहे थे। स्पष्ट था कि उबड़ खाबड़ रेगिस्तानी पहाड़ों ने खैबर पास के इन लोगों को अपनी ही दुनिया में कैद कर रखा था। स्थानीय लोग कंधों पर बंदूकें उठाए घूम रहे थे। कुछ ने अपनी छाती पर गोलियों की पेटी भी बांधी हुई थी। हिचकोले खाती हुई बस हथियारों की फैक्ट्रियों के पास से गुजरी, जहां से सभी को देसी बंदूकें उपलब्ध कराई जाती थीं। दूर से मैंने रेतीले पथ पर माल लादे ऊँटों के लंबे कारवां भी जाते देखे। खड्डों पर झटके खाती बस खैबर के पास से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए मैं अपने मन की आंखों से यहाँ का इतिहास देखने लगा। 400 ईस्वी सन पूर्व सिकंदर की भारत पर चढ़ाई, 13वीं सदी में चंगेज खान का रक्तरंजित आक्रमण, उपमहाद्वीप को लूटने और जीतने के लिए अपने सम्राट की अगुवाई में वहां से मार्च करती विशाल मुगल सेनाएं और अंग्रेजी सैनिकों का कत्लेआम करते हुए कबीलाई, पीढ़ियों से खून खराबा और मार काट इन स्थानीय पश्तून समुदायों के लिए रोजमर्रा का विषय था। यद्यपि जिंदगी के लिए होने वाले संघर्ष की छाप उन कबीलाइयों के चेहरों पर स्पष्ट नजर आ रही थी, तथापि उन पर एक प्रकार की तपस्या से उत्पन्न आभा भी दिख रही थी। उनसे जुड़ी सभी विभत्स कथाओं का स्मरण करते हुए अब मैं इन लोगों को आदर का पात्र भी मानने लगा था, लेकिन खिड़की के भीतर से ही। शाम को बस ने हमें पेशावर पाकिस्तान पहुंचा दिया। उत्सुकतावश में फुटपाथ पर शांति से बैठी एक बूढ़ी औरत के पास गया। उसने काला बुर्का पहना हुआ था। अपने सामने उसने एक टाट का कपड़ा बिछाया था, जिस पर विभिन्न प्रकार के सस्ते गहने रखे थे। मैं ये देखने के लिए और निकट गया कि दादी माँ क्या बेच रही है। पीतल के बगनखे। वो पीतल के बगनखे बेच रही थी, जिन्हें हाथ की अंगुलियों में पहना जा सकता था। उनमें तेज धार वाले नुकीले कांटे थे। उनकी रचना इस प्रकार हुई थी कि वे मांस को काटकर शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकलने पर उसे फाड़ देते। उन क्रूर हथियारों पर हल्के कीमती रत्न जड़े थे। उसने मुझे बगनखे का एक गुप्त बटन दबाने के लिए कहा, और जब मैंने उसे दबाया, उश, एक चाकू निकल आया। मेरा सिर घूम गया। वो बूढ़ी औरत जोर देने लगी कि मैं उसे खरीदने के लिए मोल भाव करूं, किंतु मैं विनम्रता से उसे मना कर अपने रास्ते पर चल दिया। भारत और मेरे बीच अब केवल एक ही देश बचा था। भारतीय वीजा लेने के लिए मैं अत्यंत आतुरतापूर्वक स्थलमार्ग से प्राचीन शहर लाहौर पहुंचा। रास्ते में मुझे कुछ भले लोग मिले, जिन्होंने मुझे भोजन दिया और अपनी बस या ट्रक में यात्रा कराई। इन लोगों की सहायता से पाकिस्तान में मुझे घर जैसी अनुभूति हुई। एक दिन प्रातः मैं लाहौर में भारतीय दूतावास समक्ष प्रतीक्षा कर रहा था। खुले आकाश में बड़े बाज मंडरा रहे थे। जब अंततः दूतावास के दरवाजे खुले तो मैं भीतर गया और मैंने नम्रता से अपनी दस्तावेज वहां के अधिकारी को दिखाए। जब उसने मोहर लगाई तो मेरा हृदय झूमने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे भगवान के धाम का वीजा मिल गया। भारत अब केवल एक कदम दूर था। योगियों, लामाओं और साधु संतों की धरती मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यहां 11वां अध्याय समाप्त होता है।